शाम का वक्त था। आज मानव और नित्या वापस आने वाले थे, इसीलिए अनीता जी सुबह ही उनके वेलकम की तैयारी करने घर चली गई थी। कायरव और अनाया उन्हें पिक करके वहां जाने वाले थे। आज का सबका डिनर वहीं होना था। अनाया और कायरव दोनों रेडी थे और निकलने ही वाले थे कि उनके घर के बाहर एक कार आकर रुकी। इस वक्त कायरव अनाया का हाथ थामे बाहर ही जा रहा था जब उस कार की आवाज ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। कायरव और अनाया दोनों सर घुमाकर सवालिया निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे, जैसे पूछ रहे हों कि इस वक्त यहां कौन आया है। फिर दोनों ने ही कंधे उचका दिए। इतने में कदमों की आहट हुई और दोनों की निगाहें सामने की तरफ उठ गईं। जैसे ही उनकी नज़र सामने से आते शख्स पर पड़ी, उनके एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए और आंखों की पुतलियां आश्चर्य से फैल गईं। मिसेस रायचंद, मॉम, कायरव और अनाया दोनों ने एक साथ कहा और एक बार फिर नजरें घुमाकर हैरान परेशान से एक दूसरे को देखने लगे। कायरव, क्या तुम पहले से जानते थे कि तुम्हारी मॉम आज यहां आने वाली है? अनाया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सवाल किया। कायरव, जो खुद इस वक्त मिसेस रायचंद को यहां देखकर हैरान था, उसने तुरंत सर हिलाया। नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरी तो काफी टाइम से मॉम से बात तक नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त यहां क्यों आई हैं। अनाया के माथे पर बल पड़ गए। दोनों बातें कर रहे थे, उतने में मिसेस रायचंद आकर अनाया के सामने खड़ी हो गई। मैं जानती हूं तुम दोनों मुझे इस वक्त ऐसे अचानक यहां देखकर हैरान हो। मैं इसे बिना बताए आने के लिए माफी चाहती हूं, लेकिन मेरा आना जरूरी था। मिसेस रायचंद की बात सुनकर कायरव और अनाया दोनों सर घुमाकर उन्हें देखने लगे। मिसेस रायचंद की निगाहें अब अनाया की तरफ घूम गईं। अनाया, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या मैं तुमसे अभी बात कर सकती हूँ?
जी,
अनाया ने हड़बड़ाते हुए सर हिलाया और आंखें बड़ी बड़ी किए सवालिया निगाहों से उन्हें देखने लगी। वैसे आपको मुझसे क्या बात करनी है?
मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ।
माफी? अनाया बुरी तरह चौंकी। उसकी आंखें बाहर आने को हो गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। हैरान तो कायरव भी था और अब उसकी गहरी निगाहें मिसेस रायचंद पर टिकी थीं, जो आज कुछ अजीब सी कश्मकश में उलझी हुई लग रही थी, नजरें चुरा रही थीं। उनके चेहरे पर अजीब सा दुख, ग्लानी, पछतावा, अफसोस झलक रहा था, जिसकी वजह वो चाहकर भी समझ नहीं पा रहा था।
हाँ, माफी, मैं आज यहां तुमसे माफी मांगने आई हूं।
माफी पर किस लिए? जहां तक मुझे याद है, हाल फिलहाल में तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए आपको मुझसे माफी मांगनी पड़े, अनाया ने फौरन सवाल किया, जिस पर मिसेस रायचंद कुछ देर चुप सी खड़ी रही, फिर सिर झुकाते हुए धीमी आवाज में बोली,
रिसेंट में नहीं किया, लेकिन कायरव से तुम्हारी शादी के बाद मैंने तुम्हारे साथ जिस तरह बिहेव किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन आज मैं यहां अपने उस बिहेवियर के लिए माफी मांगने नहीं आई हूं।
तो फिर किस लिए माफी मांगने आई हैं आप? अनाया अब हैरान से ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। सुना मैंने उस दिन सब, तुम्हें और तुम्हारी आई को जिस दर्द से गुजरना पड़ा, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार मैं हूं। मिसेस रायचंद की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उनकी बातों से अनाया के साथ साथ कायरव के एक्सप्रेशन भी बदलने लगे थे और भौहें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गई थीं।
किस दिन की बात कर रही हैं आप? कहना क्या चाहती हैं, मैं कुछ समझी नहीं।
उस दिन जब तुम घर आई थी, तुम्हारे डैड से तुम्हारी जो बात हुई, सुना मैंने, मिसेस रायचंद ठहरी। कायरव और अनाया दोनों की नजरें अब उन पर टिक चुकी थीं, जिनमें हजारों सवाल तैर रहे थे और मन अजीब सी बेचैनी से भर गया था। वो लड़की जिससे तुम्हारे डैड प्यार करते थे, जिसे पाने के लिए उस आदमी ने तुम्हारी आई को यूज किया, जिसके दिए धोखे की सजा उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी आई को दी, वो धोखेबाज लड़की मैं ही हूं। अनाया और कायरव दोनों को झटका सा लगा। इस सच ने उन दोनों को हिलाकर रख दिया। लगा जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अनाया टकटकी लगाए अविश्वास भरी नजरों से उन्हें देखती ही रह गई। कायरव खुद भी सदमे में था। उसके लिए भी ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मैं ही वो लड़की हूं जिसे पाने के लिए तुम्हारे डैड ने तुम्हारी आई और तुम्हारी लाइफ पर बात कर दी, लेकिन मैंने ये सब इंटेंशनली नहीं किया। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। जब प्रकाश से मेरी मुलाकात हुई, उस वक्त मैं कॉलेज में थी। वो मेरे डैड का पीए था। हमारी मुलाकातें हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हम तो शादी भी करना चाहते थे, लेकिन डैड को ये मंजूर नहीं था क्योंकि प्रकाश गरीब था। जब मेरे डैड को हमारे बारे में पता चला तो उन्होंने प्रकाश को जॉब से निकाल दिया और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उससे मिलने या बात करने की कोशिश की तो वो अपनी जान दे देंगे। मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती थी, उन्हें अपने वजह से मरते नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए मजबूरन मुझे प्रकाश से दूर होना पड़ा। मेरी उससे बात भी बंद हो चुकी थी। मैं अपने रूम में बंद रहती थी, इसीलिए मुझे नहीं पता चला कि वो क्या कर रहा था। कुछ टाइम बाद मेरे डैड ने मुझे यशवर्धन रायचंद से मिलवाया और बाकी लड़कियों जैसे मैं भी पहले ही मुलाकात में उनके लुक्स और पर्सनैलिटी पर फिदा हो गई थी।
उसके बाद हमारी कुछ मुलाकातें हुई जिसमें यश ने मुझे इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो मुझे प्रिंसेस जैसे ट्रीट करता था, ऐसे दिखाता था जैसे मुझसे ज्यादा सुंदर लड़की उसने कभी देखी ही नहीं, मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए कोई और नहीं, जैसे वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। और मैंने उसके इस झूठ को सच समझ लिया। शादी से पहले ही हम एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। कहते हुए मिसेज रायचंद जरा झिझकी और नजरें चुरा गईं। उनकी बात का मतलब समझकर कायरव ने उन पर से निगाहें फेर ली। उसके बाद हमारी शादी हो गई। जब प्रकाश वापस आया तब तक कायरव का बर्थ हो चुका था। उसने मुझसे कहा था कि वो हम दोनों को अपना लेगा, बस मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर उसके साथ चलूं। उस वक्त तक यश का असली चेहरा मेरे सामने आ चुका था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अपने डैड की धमकी के आगे मजबूर होकर मैं चाहकर भी प्रकाश का हाथ नहीं थाम सकी। उस दिन आखिरी बार मैंने उसे देखा था। डैड ने उसकी बहुत इंसल्ट की और धक्के मारकर उसे हमारे घर से बाहर करवाया था। उसके बाद वो कहाँ गया, उसने क्या किया, तब उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। जब दिन सालों बाद मैंने उसे अपने घर में देखा और जब तुम्हारी और उसकी बातें सुनी, तब मुझे सारी सच्चाई पता चली। उस दिन से मुझे एक पल भी कहीं सुकून नहीं आया। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। मेरे वजह से तुम्हारी और तुम्हारी आई की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। ये गिल्ट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था, इसीलिए आज मैं यहाँ आई हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं चाहूँ भी तो कुछ बदल नहीं सकती, लेकिन माफ़ी तो मांग सकती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो। इनाया की नज़र धुंधली होने लगी, उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसे वो सब याद आने लगा जो उसकी आई और उसने सहा। उसने कायरव की बाहों को अपनी दोनों हथेलियों से थाम लिया। कायरव जो नजरें फेरे खड़ा था, उसने फौरन सर घुमाकर उसे देखा और इनाया की हालत देखकर एकदम से घबरा गया। इनाया, इनाया क्या हुआ तुम्हें? इनाया ने गर्दन दाएं बाएं हिलाई और उसके सीने पर अपना सर रख दिया। उसकी आंखों की फिसली आंसू की बूंदे कायरव की शर्ट को भिगो गईं। इनाया रिलैक्स, लंबी लंबी सांसें लो, खुद को शांत करो, कुछ मत सोचो, इधर देखो मेरी तरफ। कायरव ने इनाया को सोफे पर बुठाया और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए उसकी भीगी पलकों को अपने अंगूठे से पोंछ दिया। इनाया के कानों में जब उसकी घबराहट भरी आवाज पड़ी तो उसने धीरे से अपनी पलकें उठाई। आंखों के आगे कायरव का परेशान सा चेहरा आ गया। मैं ठीक हूँ, लो थोड़ा सा पानी पी लो। कायरव ने तुरंत पानी का ग्लास उठाकर उसके होंठों से लगा दिया। इनाया ने थोड़ा पानी पिया, फिर ग्लास हटा दिया। कायरव ने उसे वापस टेबल पर रखा और एक बार फिर उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया। क्या हो गया था तुम्हें?
पता नहीं, शायद ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था तो पेट में तेज दर्द उठा, लेकिन अब ठीक हूँ मैं। सच में अब दर्द भी नहीं हो रहा, तुम परेशान मत हो। इनाया ने अपनी हथेली से उसके गाल को सहला दिया। कायरव के एक्सप्रेशन जरा बिगड़े और अगले ही पल वो तीखी निगाहों से उसे घूरते हुए गुस्से से भड़क उठा। टू बी कंटिन्यूड।